उसके बाद हम आ जाते हैं जनरलाइज फिस्टुला सोराइसिस पे कि व्हाट इज़ दिस अक्यूट जन इट कैन ईदर बी अक्यूट सब अक्यूट और क्रॉनिक इरप्शन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इनिशियल अपेयरेंस ऑफ द एरिथमेटस प्लाक्स फॉलोड बाय द अपेयरेंस ऑफ स्टेराइल पस्ट्यूल्स विच आर ईदर डिस्क्रीट और लेक्स ऑफ पस्ट्यूल्स दीज कैन अपेयर एनी वेयर ऑन द बॉडी ईदर फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस or from the localized form of pustular psoriasis where it has a worst prognosis. For example, if the generalized pustular psoriasis is originating from the acrodermatitis container of Hallepi, then it has a worst prognosis. But it can also arise from the chronic plaque psoriasis or from unstable psoriasis as a result of a number of predisposing factors. Jisme hamare paas infection hai, psychological stress hai, सडन विथड्रॉल ऑफ द स्टीरोइड्स या फिर कुछ ऐसे इरीटेटिंग एजेंट्स लाइक डाइथ्रोनॉल या टार उसके एप्लीकेशन से ये हो सकता है. उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जिनका जो है ना वो हमारे पास एक न्यूमोनिक है दैट इज़ PSL TB. ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग TB. पी जो है ना उसमें 3 P's है हमारे पास. एक तो हमारे पास प्रोप्रेनोलॉल है, फिनाइल ब्यूटाजोन है, पोटेशियम आयोडाइड है, सेलिसाइलेट्स, लिथियम, टर्बिनाफिन एंड ब्यूप्रोपियन. इसके अलावा जो है ना विद्रॉल ऑफ साइक्लोस्पोरिन से भी हो सकता है और प्रेगनेंसी और हाइपोकैल्सीमिया से भी हो सकता है. तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हुए, एक तो हमारे पास हो गया साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सम टॉपिकल इरीटेटिंग ड्रग्स लाइक कोल टार एंड डाइथ्रोनॉल, विद्रॉल ऑफ स्टेरॉइड्स और साइक्लोस्पोरिन, ड्रग्स दैट इज़ PSL TB और इन्फेक्शंस. ये सारे वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो एक प्री एग्जिस्टिंग प्लाक सोराइसिस है या एक्रोडर्मेटाइटिस कंटिन्यू ऑफ हेलोपी लोकलाइज पस्टुलर सोराइसिस कन्वर्ट हो सकता है इनटू जनरलाइज पस्टुलर सोराइसिस. इवन के जो जनरलाइज पस्टुलर सोराइसिस है ना वो ऑन इट्स सेल्फ भी अपेयर हो सकता है विदाउट एनी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या प्रीवियस कोई हिस्ट्री ऑफ सोराइसिस. एज इंसिडेंस जो है ना वो ज़्यादातर इसमें एडल्ट्स में होती है 40 to 59 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन जो है ना बच्चों में भी आ सकती है. जैसे हमने पढ़ा हुआ है ना कि इसमें जो इन्फेंटाइल और जो जुवेनाइल जनरलाइज पस्टुलर सोराइसिस. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हिस्टोपैथोलॉजी है ना उसमें अगर हम एपिडर्मस से स्टार्ट करें तो एपिडर्मस में हमें एकेंथोसिस मिलती है और उसके अलावा जो है ना वो इंटेंस पैपिलरी और एपिडर्मल एडीमा मिलता है, स्पॉन्जियोसिस, सबकॉर्नियल पस्टूल्स मिलते हैं दैट इज़ द गोगोच एब्सेसेस विच इमीडिएटली बिकम्स वेरी क्विकली इट बिकम्स मैक्रोस्कोपिक एंड इज़ विजिबल विद विजिबल आई. एकेंथोसिस विद एलोंगेशन ऑफ रेटी रिजेस. डर्मस के अंदर जो है ना वो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेटिव इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे और न्यूट्रोफिल्स भी नज़र आ सकते हैं. स्ट्रेटम कॉर्नियम सून बिकम पैराकेराटोटिक, उसके अंदर सब कॉर्नियल पस्ट्यूल्स नज़र आएंगे और एपिडर्मल टर्नओवर जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में जो है ना ये है कि इसके अंदर हमारे पास पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं. पेशेंट जो भी क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस या कोई भी स्टेबल डिजीज़ वाला होगा उसके अंदर जो है ना फीवर, आर्थ्रेलजिया, माइल्जिया, जॉइंट पेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद उसकी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल, एरिथेमेटस और टेंडर हो जाएगी. फिर उसके बाद जो है ना वो उसके स्किन के ऊपर पहले डिस्क्रीट पस्ट्यूल्स आना शुरू हो जाएंगे और वो डिस्क्रीट जो पस्ट्यूल्स है ना वो या तो कोलेस हो सकते हैं, एकदम से उसके अंदर सक्सेसिव क्रॉप्स ऑफ इरप्शन आ जाएगी और फिर उसके बाद जो है ना ये इंक्रीज़ होती जाएगी, बॉडी को इन्वॉल्व करेगी, लेक्स ऑफ पस बन सकते हैं. अब ये जो पस की अपेयरेंस है ना वो डिफरेंट है, किसी किसी में डिस्क्रीट पस्ट्यूल्स होते हैं, किसी में जो है ना एरिथमेटस प्लाक्स के एडवांसिंग एज के एजेस पे हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं पस्ट्यूलर कॉलोरेट, या फिर जनरलाइज जो है वो एरिथ्रोडर्मा भी हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा जो है ना स्किन की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ इसमें बकल म्यूकोजा भी इन्वॉल्व हो सकता है along with the tongue and the nails may become shed because of the subungual lakes of pus.